साहिल भी तुम हो बाबा, दिल की तुम धड़कन बाबा, सरगम की धुन तुम बाबा। इन आधी तूफानों में खो न जाऊं मैं बाबा, इन आधी तूफानों में खो न जाऊं मैं बाबा। सुनसान काली रातें राहों में आते जाते भयभीत करती पल पल, बेचैन दिल को माया, बेचैन दिल को माया, निशब्द फैले जाया तेरे सहारे, अब तो निकला अकेले बाबा। ओ बाबा तू ही किनारा, ओ बाबा तू ही सहारा, मेरे बाबा यादों में तुम हो बाबा, ख्वाबों में तुम हो बाबा। दर्द की दवा तुम बाबा, गम में सुकून तुम बाबा, सपनों की उड़ाने तुमसे जीवन की राह तुम बाबा, सफर में खुशी तुम बाबा, जीने का सहारा बाबा, हर पल में तुम हो बाबा, धड़कन में तुम हो बाबा, जीवन में तुम हो बाबा, पल पल में तुम हो बाबा, हर पल में तुम हो बाबा, जीवन में तुम हो बाबा।
ओम शांति। हरी भरी वसुंधरा पर नीला नीला ये गगन, कि जिस पे बादलों की पालकी उड़ा रहा पवन, दिशाएं देखो रंग भरी, चमक रही उमंग भरी, ये किसने फूल फूल पे किया श्रृंगार है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है। तपस्वियों सी है अटल ये पर्वतों की चोटियां, ये बर्फ की घुमेरदार घेरदार घाटियां, ध्वजा से ये खड़े हुए वृक्ष देवदार के, गलीचे ये गुलाब के बगीचे ये बहार के, ये किस कवि की कल्पना का चमत्कार है, ये कौन चित्रकार है। कुदरत की इस पवित्रता को तुम निहार लो, इसके गुणों को अपने मन में तुम उतार लो, चमका लो आज लाली माँ अपने ललाट की, कण कण से झांकती तुम्हें छवि विराट की, अपनी तो आंख एक है उसकी हजार है, ये कौन चित्रकार है। हरी भरी वसुंधरा पर नीला नीला ये गगन, कि जिस पे बादलों की पालकी उड़ा रहा पवन, अपनी तो आंख एक है उसकी हजार है। हमारा एक दृष्टिकोण है, हमारा पार्ट है, उसका समग्र है, हमारा अधूरा सत्य है उसका पूर्ण सत्य है, और प्रकृति के समीप जाकर उसकी विराटता की झलक हम देख सकते हैं, ये किस कवि की कल्पना का चमत्कार है। ये कौन महाकवि है, ये किसकी कल्पना है, ये कौन विराट है, सारी मुरलियों में प्रकृति के उदाहरण आते हैं। और बाबा कहते हैं प्रकृति में ये जो चीजें बनी है ये तुम्हारा यादगार है। कल भी एक जगह पर सुना है कि एक व्यापारी, कल किसी और अर्थों में सुनाया था कहीं और, एक व्यापारी जिसे दिन रात बस एक ही लगन है कि अपने व्यापार को बढ़ाऊं, सिल्क का व्यापार करता है, परफ्यूम का व्यापार करता है, स्पाइसेस का व्यापार करता है, उसे हर मसाले की जानकारी है, हर इत्र के बारे में वो जानता है, हर खुशबू से वो परिचित है, हर रेशम को भली भांति परख सकता है। सारा जीवन उसने यही तीन वस्तुओं का व्यापार किया, देश में किया, विदेश में किया, हर जगह किया, और दिन रात उसके मन में यही चिंतन है कि इस व्यापार को कैसे बढ़ाऊं। उसे सब खबर है कहाँ किस भाव में, कम भाव में ये मिलता है, किस क्वालिटी का मिलता है, कहाँ जाकर उसे बेचूं, सब कुछ। और जब वो एक दिन सुनता है एक अत्यंत बुद्धिशाली, एन इंटेलिजेंट मैन है जिसको कोई भी प्रश्न पूछो उसका वो उत्तर दे सकता है, तो भागे भागे उस व्यक्ति के पास पहुंचता है, और इससे पहले कि अपना प्रश्न पूछे वो बुद्धिमान व्यक्ति उससे कहता है कि तुम हिमालय की ओर जाओ, और वहां पर चोटी है जिसका वो नक्शा देता है और कहता है यहां तुम्हें वो वस्तु मिलेगी जिसकी तुमने कभी कल्पना नहीं की होगी, जो तुमने आज तक कभी देखी नहीं होगी। वो व्यक्ति अपने तेज घोड़े पर सवार हिमालय की ओर निकलता है, उस चोटी पर पहुंचता है। उस बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा था 3 दिन 3 रात वहां रहना, तुम्हें जरूर कुछ ऐसा मिलेगा जो तुमने आज तक कभी देखा नहीं। वो वहां 3 दिन रहता है, 3 रात रहता है, खाना पीना सब छोड़ देता है, और उसे इंतजार है शायद कोई अदृश्य दरवाजा खुले और उसमें से रेशम, इत्र और मसाले की नई वैरायटी, नए ब्रांड, नई क्वालिटी के कहीं से मिल जाए, कोई खजाना ही मिल जाए। सूरज उगता है वो देखता है, नदी बह रही है, झरने बह रहे हैं, वृक्ष है, परंतु उसे सब धुंधला धुंधला दिखता है। उसका ध्यान केवल जो उसके मन में था उसी पर है। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन कुछ भी नहीं मिलता, क्रोधित होके वापस आता है, उस व्यक्ति से जाकर मिलता है और कहता है तुमने कहा था वहां कोई ऐसी चीज मिलेगी तो जो मैंने कभी देखी नहीं, और वहां तो मुझे कुछ भी नहीं मिला, मेरे वैसे ही 3 दिन व्यर्थ हो गए। वो बुद्धिमान व्यक्ति कहता है अब तुम्हें वापस वहां जाने की जरूरत। पर वास्तव में वो जो नदी बह रही थी, उस नदी के इर्द गिर्द और नीचे केवल हीरे ही हीरे, जो तुम देख नहीं पाए। वो व्यक्ति याद करता है धुंधला सा कुछ तो चमकता हुआ दिख रहा था, पर वो देख नहीं पाता। कहानी यहां पूरी होती है। 7 बातें बताओ जो इस कहानी से सीख। मॉरल ऑफ द स्टोरी इन 7 वेज, किससे बाहर आने का, हद से। कौन से हद से, ये कहानी में क्या माइंडफुलनेस सबसे पहली चीज है। माइंडफुलनेस जो कर रहे हैं बस यही इस समय का ये सत्य है। आगे क्या करना है, आज दिन भर क्या करना है, वो सब बाद में, अभी यहां बैठे हैं तो ये ही एकमात्र सत्य है। इसके अतिरिक्त तो और कोई सत्य नहीं है। फ्यूचर की प्लानिंग बनाना वो अलग, पर इस पल में जीना, इन दिस मोमेंट लाइज इटर्निटी, इस पल में ही सदी छिपी हुई है, नाउ हियर, अभी 5:14, यही संपूर्ण सत्य है। इससे अतिरिक्त, इसके अतिरिक्त तो और कोई सत्य नहीं है। तो वो न झरनों को देख पाया, ना नदी को देख पाया, ना उगते हुए सूरज को देख पाया, क्योंकि उसकी बुद्धि में बिजनेस, रेशम, मसाले और इत्र और खुशबू यही था। इसलिए जो वर्तमान में चल रहा है, he missed the bus, वो कुछ भी देख नहीं पाया। यह है चैप्टर 1, लेसन 1। लेसन 2, प्रेजेंस और एक्सपेक्टेशंस। वो इतना फोकस था, उसकी जो प्रीकंसीव्ड आइडिया थी रिचनेस के बारे में, समृद्धि के बारे में, कि बाहर की वर्तमान की समृद्धि वो देख ही नहीं पाया। उसके लिए समृद्धि अर्थात वो बिजनेस, वो पैसा, वो मुनाफा, परंतु बाहर भी प्रकृति की एक समृद्धि थी, प्रकृति की एक रिचनेस एंड ऑपुलेंस, वो देख ही नहीं पाया क्योंकि मन कहीं और लगा हुआ था। ये सेकंड। तीसरा, हम अपने बिलीफ सिस्टम से अटैच्ड रहते हैं, इसलिए नया उसमें प्रवेश ही नहीं कर पाता है। हमारी फिक्स्ड धारणा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, इसलिए नया कुछ भी उसमें प्रवेश द्वार बंद है नए के लिए। पर एक ही चीज को देखने के कितने अलग अलग माध्यम हो सकते हैं, विधियां हो सकती है। अपनी तो आंख एक है, उसकी हजार है, हजार दृष्टिकोण हो सकते हैं एक ही मुरली को देखने के। एक ही मुरली का महावाक्य ले लो, चिंतन अलग अलग प्रकार से हो सकता। तीसरा, जो गाइडेंस उस बुद्धिमान व्यक्ति ने दिया था, इसने उसको मिसअंडरस्टूड किया। उसने कहा था तुम ऐसी वस्तु देखोगे जो तुमने कभी देखी नहीं, तो उसने वही सोचा, ऐसे मसाले जो मैंने देखे नहीं, ऐसे रेशम जो मैंने देखे नहीं, ऐसी सुगंध जो मैंने देखी नहीं, उसने ये सोचा ही नहीं कि इसके अलावा भी कुछ और हो सकता, समथिंग बियॉन्ड, देर आर मैनी थिंग्स इन हेवन एंड हेल होरेशियो देन आर ड्रीम्ड ऑफ इन यू फिलोसोफी। शेक्सपियर का हैमलेट अपने साथी से कहता है कि होरेशियो सुनो, होरेशियो उसका साथी है, जो तुम सोचते हो, जहां तक तुम्हारी बुद्धि जाती है, जितना तर्क है, जितना लॉजिक है, देर आर मैनी थिंग्स हेवन में और अर्थ में होरेशियो देन आर ड्रीम्ड ऑफ इन योर फिलोसॉफी। होरेशियो विदुर जैसा है, अत्यंत बुद्धिशाली, या रामायण के जबाली जैसा है, राम राज्य में जबाली है, एक वशिष्ठ है, राजा दशरथ का गुरु, और उसी राज्यसभा में जबाली जो नास्तिक है थोड़ा बहुत, परंतु तर्कवादी है। सो देर आर मेनी थिंग्स इन हेवन एंड हेल होरेशियो देन आर ड्रीम्ड ऑफ इन योर फिलोसॉफी। जो तुम सोचते हो, जितना तुम सोचते हो, उससे परे भी कोई एक सोच है, द सोच बियॉन्ड द सोच, द थिंकिंग बियॉन्ड द थिंकिंग, द गेटलेस गेट, द साउंडलेस साउंड, द टचलेस टच, द इंटेलिजेंस बियॉन्ड द इंटेलिजेंस, The enlightenment beyond the enlightenment। जहां तक तुमने सोचा है ये है, उसके परे भी कुछ है, या फिर उसके परे से ही शायद चालू होता है, तुम तो पहुंचे ही नहीं। इस व्यक्ति के मन में केवल वो तीन ही चीजें घूम रही थी, इसलिए वो सोच ही नहीं पाया कि इससे परे भी कुछ है। इसलिए द मैसेज वॉज मिसअंडरस्टूड। और क्या सीखता है व्यक्ति? परसेप्शन वर्सेस रियलिटी। उसे केवल पत्थर दिखे, वास्तव में वो हीरे थे। क्यों? लिमिटेड पर्सपेक्टिव था। टनल विजन इसको इंग्लिश में कहते हैं। टनल विजन मतलब वो घोड़े होते हैं ना, घोड़े, उनको ये ऐसा लगाया जाता है। क्यों लगाते हैं? इधर उधर देखना नहीं चाहिए, दाएं बाएं, केवल साइड सीन, इतना ही देखते हैं बस। उसी तरह संसार में भी कई लोग हैं जिनकी टनल विजन हो, सुरंग, बस उतना ही, उससे ज्यादा, उससे परे, उससे अधिक, उससे ऊपर, उससे नीचे, उससे दाएं, उससे बाएं। दे कांट सी हद, बाबा जिसको कहते हैं हद। अगला, ग्रीड वर्सेस ग्रेटिट्यूड। उसके अंदर इतनी ग्रीड थी, इनसेशियबल डिजायर, कभी ना पूरी होने वाली कामना कि और पाऊं, और पाऊं, और पाऊं। उस ग्रीड ने उसे वो देखने नहीं दिया जो सामने था। पूरी नदी में हीरे भरे थे, पर 3 दिन रहा, 3 रात रहा, परंतु उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। उसकी बुद्धि कहीं और बिजी थी। क्लास में बैठे हैं परंतु बुद्धि कहीं और बिजी है। मधुवन में आए हैं परंतु बुद्धि संसार में है। मुरली सुन रहे हैं परंतु कान सुन रहे हैं, मन, आत्मा तो कुछ और ही सुन रही है। अध्यात्म में उन्नति के लिए सबसे पहले तो यह स्वीकार करना है, पाना था सो नहीं पाया। क्या स्वीकार करना है? जो पाना था वो नहीं पाया, बाकी सब पाया, पर जो पाना था वो अनपाया ही रह गया। मिलना था सो अनमिला ही रह गया है। और चित्त में भर दिया ढोंग और पाठम, पाखंड, और बाहर से नैतिक दिखावा। और लास्ट, सेवेंथ, ट्रू वेल्थ जो है वो विदिन है, भीतर है, बाहर है ही नहीं। सारी संपत्ति मिल जाए, कोई व्यक्ति मिल जाए, सब मिल जाए, आत्मा तृप्त ही नहीं हो पाती। तो एक कहानी है, उसमें से ये सात, जो भी वाक्य सुनते हैं, जो भी गीत सुनते हैं, जो भी कहानियां सुनते हैं, उसमें से मॉरल निकालना है। ये किस लिए? जो जीवन में घटनाएं होती है उनको भी कहानी की तरह देखो। ये मैं हूं, वो मैं हूं ही नहीं, कोई और है, और ये कहानी घटी, ऐसा 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 हुआ। अब इस कहानी से मैं क्या सीखता हूं? स्वयं का झूठ और स्वयं का दिखावा और स्वयं का ढोंग, स्वयं का डिसेप्शन, आत्म प्रवंचना, आत्म वंचना। जब तक आंखों से देखते नहीं कि ये डिसेप्शन है, तब तक कोई उन्नति नहीं। एक स्कूल में एक इंस्पेक्टर आता है अचानक सरप्राइज टेस्ट लेने। विद्यार्थियों से कहता है कि तुम में से फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कौन है? स्कूल में, उस कक्षा में पहले नंबर पर कौन आया? दूसरे नंबर, फर्स्ट थ्री टॉपर्स। जो पहले नंबर का आया उसको बुलाता है और कहता है, बोर्ड पर एक सम लिखता हूं, एक प्रश्न, उसका उत्तर तुम लिखो। पहला नंबर वाला आता है, उत्तर लिखकर चला जाता है, कहता है दूसरा नंबर कौन है? उसके लिए एक दूसरा प्रश्न लिखता है और वो चला जाता है, उत्तर सही है। तीसरा प्रश्न लिखता है और कहता है, तीसरे नंबर पर कौन है? तो एक विद्यार्थी आता है और लिखता है, और जैसे लिखने जाता है वो स्कूल इंस्पेक्टर कहता है, तुम तो वही हो जो फर्स्ट नंबर पर थे, तुम थर्ड नंबर पर कैसे आ गए? वो कहता है, वास्तव में क्या है, जो थर्ड नंबर पर आया वो मेरा मित्र है, और बाजू के गांव में क्रिकेट मैच हो रही है तो वो देखने गया है। वो इंस्पेक्टर तो एकदम गुस्से में आ जाता है। वो तो ऐसे कैसे कर सकते हो, टीचर की तरफ देखता है, तुम्हारे स्कूल में चल क्या रहा है। वो कहता है टीचर वास्तव में इस कक्षा का जो टीचर है वो मैं नहीं हूं, मैं तो बाजू की कक्षा का टीचर हूं। वास्तव में इस कक्षा का टीचर तो मैच देखने, क्रिकेट मैच देखने बाजू के गांव में गया है। उसको बहुत ये होता है, ये क्या हो क्या रहा है स्कूल में। सीधा प्रिंसिपल के ऑफिस में जाता है, प्रिंसिपल को कहता है आपके टीच स्कूल में क्या हो रहा है, बच्चे की जगह कोई दूसरा बच्चा है और टीचर की जगह कोई दूसरा टीचर। वो कहता है माफ करना, वास्तव में मैं प्रिंसिपल नहीं हूं, मैं उसका दोस्त हूं। यहाँ का प्रिंसिपल तो बाजू के गांव में गया है स्कूल टीचर क्रिकेट मैच देखने, उससे तो रहा नहीं जाता है, सीधा स्कूल की समिति के अध्यक्ष के पास जाता है। समिति का अध्यक्ष कहता है, को बताता है ये हो क्या रहा है, एक बच्चे की जगह पर दूसरा बच्चा है, टीचर की जगह दूसरा टीचर है, प्रिंसिपल की जगह दूसरा प्रिंसिपल है। वो कहता है मुझे तो पैसे देकर एक दिन के लिए यहाँ बिठाया गया है। वास्तव में समिति का अध्यक्ष है वो तो क्रिकेट देखने गया है। वो इंस्पेक्टर कहते हैं मुझे भी क्या लेना देना, मैं कहाँ इंस्पेक्टर हूं। इंस्पेक्टर तो क्रिकेट मैच देखने गया है, मैं तो उसकी जगह पर आया हूं। ऊपर से लेके नीचे तक पूरी सिस्टम ही किसको कहां दोष दे। आगे मेरे अंधी आ रहा, पीछे अंधी आंधी है, ऐसी आंधी में मैंने दिया जलाया है। जहां चारों तरफ अंधकार है वहां पर हमें सत्य के मार्ग पर चलना है, जहां चारों तरफ भ्रष्टाचार है वहां पर नीति पर चलना है, श्रीमत पर चलना। तो आज सितारों की बातें की है बाबा ने, नौ प्रकार के सितारे गिनाए हैं। नौ मतलब उसमें भी और प्रकार हो सकते हैं। तो सबसे पहली मुरली 22 तारीख, पहला क्लासिफिकेशन चमक के आधार पे, किसी की चमक कम है, किसी की चमक ज्यादा है, किसी की चमक जो विश्व को रोशन करने वाले, खुद की चमक अपने आप को ही रोशनी नहीं दे पा रही है, खुद ही लाइट का अनुभव नहीं कर पा रहे, खुद का ज्ञान का प्रकाश ही खुद की कमियों को से स्वयं को ही मुक्त नहीं कर पा रहे, तो दूसरों को प्रकाश क्या देंगे। ये फर्स्ट टू कैटेगरीज, शाइन के आधार पर, रेडियंस के आधार पर, लुमिनोसिटी के आधार पर, दिस इज द फर्स्ट। सेकंड स्पीड, कोई तेज जाने वाले, कोई धीरे धीरे जाने वाले। थर्ड ग्रुप, ग्रुप में रहते हैं और कोई कोई अकेले रहते हैं, कोई संगठन में रहते हैं, कोई संगठन से दूर रहते हैं। तीसरा स्थान या फिर स्थिति, स्थिति के आधार पर, सहयोगी है या स्नेही है, सेवाधारी है क्या। एक मूवमेंट के आधार पर, अर्थात हिलने वाले हैं या अचल है। फिर चंद्रमा के नजदीक है या चंद्रमा से दूर है। इसमें और एक है पुच्छल तारे, पुच्छल अर्थात पूछ पूछ के, धूमकेतु क्या होता है, कॉमेट, इंग्लिश में शब्द है कॉमेट, उसको हिंदी में कहते हैं धूमकेतु, उसको कहते हैं पुच्छल तारे। उसका चित्र देखा होगा ना, ऐसे ऐसा और ऐसे 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 पूछ। ये वो हेवनली बॉडीज है जो सूर्य के पास जाते हैं, गैस का गोला जैसे कन्वर्ट हो जाते हैं, और ऐसी आउटगैसिंग जिसको कहते हैं इंग्लिश में। यहां उनका क्या अर्थ है, मुरलियों में पूछते रहते हैं, हर चीज पूछते रहते हैं। जो भी नया व्यक्ति मिला उसको पकड़कर पूछो, भाई जी पुरुषार्थ कैसे करना है, ब्रह्मचर्य का क्या करना है, योग कैसे करें, योग कैसे लगाए। है तो तारे ही है ये सारे, ये सभी तारे हैं। और इन्हीं तारों के आधार पर बाबा ने कहा संसार की जो आत्माएं हैं उनकी जन्म पत्री निर्धारित होती है। हीरो हीरोइन है ये सब, सभी हीरो है, सभी हीरोइन, सभी त्रिकालदर्शी है, सभी आत्माओं का प्रारब्ध इसके आधार पर है। पर इसमें डिफरेंस है, कुछ है लकी सितारे, ये कौन है, उनके साथ लक सदैव रहता है, चाहे किसी भी भाषा की टेस्ट दे, फुल मार्क्स, तेलुगु की दे दे, तमिल की दे दे, मलयालम की दे दे, कन्नड़ की दे दे, बंगाली की दे दे। हाँ अभी तक तो नहीं आया कोई लकी, लक उनके साथ ही चलता है, चाहे कुछ भी करे, कोई बिजनेस ही करे उसमें भी आगे, कोई भी एग्जाम दे दे उसमें टॉपर। 20 होंगे। दूसरे हैं सफलता के सितारे, इनको सफलता मिलती है पर कभी असफलता भी मिलती है, इसका वर्णन इस मुरली में नहीं है, किसी और मुरली में। और तीसरा हमेशा आशावादी है, कितने भी गिर जाए, कितना भी कुछ हो जाए पर उम्मीद को नहीं छोड़ते। तो ये अलग अलग प्रकार के सितारे हैं, सफलता के सितारे, उम्मीदवार सितारे, लकी सितारे। तो ये सबसे पहली मुरली। तो आज का होमवर्क नंबर 1, क्या सुना मुरली में? पहली बात थी, एक बहुत सुंदर बात इस मुरली में है, आज बाप दादा सर्व सितारों को चमकते हुए रूप में देख रहे, चमकते हुए सितारे हैं लेकिन चमकने में भी नंबर है। सितारों की दुनिया अर्थात अपनी दुनिया देखिए, सितारों की दुनिया का गीत गाते हैं लेकिन वह कौन से सितारों की दुनिया है जिसका गायन है, यह रहस्य को भी आप सब जानते हैं। तो सितारों की दुनिया, आज भट्टी का लास्ट डे है, तो आज गीत लिखना है, ये होमवर्क है। गीत का टॉपिक सितारों की दुनिया, और गीत की जो धुन है वो कौन सी होगी जो गीत अभी सुनाया, हरी हरी वसुंधरा पे नीला नीला ये गगन, कि जिस पे बादलों की पालकी उड़ा रहा पवन, उसको नहीं लिखना है, शब्द अपने डालने हैं पर धुन ये रहेगी। गीत का टॉपिक सितारों की, सितारे नहीं सितारों की दुनिया, सितारे नहीं सितारों की दुनिया, ये टॉपिक है। तो ये आज की मुरली है। गीत लिखना है, जो गा सकते हैं वो ऑडियो भेज सकते हैं ग्रुप में, गीत लिखना है गीतकार, और जिनको अपनी मधुर आवाज में गाना है वो गा भी सकते हैं। तो एक बार स्टैटिस्टिक्स देख लेते हैं, ये भट्टी चालू हुई थी 1 मार्च से, अभी तक हमारी कितनी मुरलियां पूरी हो गई, 8381 टोटल मुरलियां, कितनी कवर करनी है हमको, 1066। तो अभी प्रोजेक्ट आगे बढ़ गया है, टोटल मुरलियाँ कितनी बची है, 685, वैसे तो 684 है, नहीं 686 है, पर एक मुरली जो 18 जनवरी की 13 संदेश है वो एक समझ के, दिस इज 865, नहीं तो 866 है, 686। कितने दिन बचे हैं हमारे पास अभी, 457 days। तो ये है स्टेटिस्टिक्स, अभी तो ये है, बात का बाद में देखेंगे। तो आज हमारी ये एक मुरली, और जो दूसरी मुरली है 28 तारीख की, सुशील भाई ने इसके ऊपर 27 प्रश्न बनाए हैं और सभी प्रश्न के उत्तर ट्रू और फॉल्स में है। तो पहले मुरली पढ़नी है फिर प्रश्न देना है, मतलब शाम को, अभी से मत चालू कर देना तुरंत। दूसरा, दूसरी जो मुरली है उस पर भी प्रश्न बनाए गए हैं 16, पर वो मुरली पहले पढ़ना है, उसके बाद उसको आंसर करना है, क्योंकि वो ट्रू फॉल्स नहीं है। ठीक है, तो ये दो आज के काम है। तो आज इस भट्टी को यहीं पूरा कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी दूसरी बातें बतानी है आज। तो कल से रिवीजन चालू होगा। कितनी मुरलियों का? 46 मुरलियों का, 1977 की 46 मुरलियां, और इन पर टेस्ट है 29th को। तो हमारे पास दिन कितने शेष है कल से? 23, 24, 25, 26, 27, 28। इन 6 दिनों में 46 मुरलियां कवर करनी है। तो उसका टाइम टेबल अभी सबको दे रहे हैं। 6 दिन में 46 मुरलियां कवर करना, इट्स नॉट अ जोक। दिन रात लगना पड़ेगा इस कार्य में, ध्यान से। और इस बार जो बताया, एमैट 7, 8 नहीं 7, अव्यक्त मुरली अध्ययन टेस्ट 7। तो कल से रिवीजन चालू करेंगे। कल 7 मुरलियों का रिवीजन करना है। सुशील भाई, अरविंद भाई, लखन भाई, 3 लोग। तो सुशील भाई, पहले 3 मुरलियां लिख लो, पहले 3 मुरलियां। उसके बाद में अरविंद भाई अगली 2 मुरलियां, लखन भाई अगली 2 मुरलियां। तो 3, 2, 2, और हर एक को 5 एमसीक्यू बनाने हैं। एमसीक्यू के प्रकार सबको पता है ना? पहला एमसीक्यू का प्रकार फिल इन द ब्लैंक्स, दूसरा एमसीक्यू का प्रकार कंप्लीट द स्टेटमेंट, तीसरे एमसीक्यू का प्रकार ट्रू की फॉल्स, करेक्ट इनकरेक्ट, राइट रॉन्ग, पांचवें एमसीक्यू का प्रकार ये माया की मुरली है या बाबा की मुरली है, छठवां एमसीक्यू का प्रकार एक वाक्य दे देना वो ज्ञान योग धारणा सेवा किस सब्जेक्ट से संबंधित है। पिछली टेस्ट में बहुत लोगों ने कंफ्यूजन किया इसके बारे में, इसमें कंफ्यूजन का कुछ है ही नहीं, सिंपल है। ये योग की पॉइंट है कि ज्ञान की है कि धारणा की है कि सेवा की है। अभी तो योग की इतनी कॉमेंट्री सबने बना दी है कि सबको पता है कि ये योग की पॉइंट है, क्योंकि उसमें कॉमेंट्री है। 5-5 प्रश्न, तो आपको 2 मुरली से लखन भाई, 2 मुरली क्रम वाइज। ठीक है, अगला 24 तारीख यशोदा बहन, क्रांति बहन, दिव्या, डॉक्टर दिव्या, 3, 2, 2। यशोदा बहन 3 मुरलियां, क्रांति बहन 2 मुरलियां, दिव्या बहन 2 मुरलियां, टोटल 5-5 एमसीक्यू। ठीक है, फिर 25 से लेके हर दिन 4 स्पीकर्स है, वो भेज देंगे, पुरुषोत्तम भाई, रविनेश भाई, निखिलेश भाई, देवेंद्र भाई, और 2-2 मुरलियां लेना है एक के बाद की एक, और एमसीक्यूज टोटल 5-5। 26 तारीख वापस 8 मुरलियां, 4 पार्टिसिपेंट, त्रिवेणी बहन, मंजू बहन, दीपाली बहन, सुमित भाई, 2-2-2-2 मुरलियां, ये है 26 तारीख का। 27 तारीख का आशीष भाई, सुखदेव भाई, विठ्ठल भाई, चंद्रशेखर भाई, 2-2 मुरलियां, हर व्यक्ति 5-5 एमसीक्यूज। 28 तारीख लास्ट डे, समीक्षा बहन, गायत्री बहन, और कौन रुकने वाला है इधर? एक नाम डबल आ रहा है इसलिए, और कोई बचा है? दीपाली बहन हो गया, आप रुकने वाले हैं? हाँ, तो आपका नाम? धीरज, धीरज, डॉक्टर रम्या, समीक्षा बहन, धीरज भाई और गायत्री बहन, 2-2-2-2-2 28 तारीख को। ठीक है, चिमन भाई बच गए, अगर कोई नहीं आया तो चिमन भाई बैकअप। तो अव्यक्त मुरलियों का ये अध्ययन जीवन की दिशा और दशा बदलने वाला है। कितना भी क्लासेस सुन लो, कितना भी लेक्चर दे दो, भट्टी कर लो, करा लो, भीतर परिवर्तन नहीं आता है। अच्छा, नरेश भाई भी बाकी है, तो नरेश भाई को भी एक एक्स्ट्रा कहीं नहीं? अच्छा, सुखदेव भाई की जगह पर आप 27 तारीख। ठीक है, वो भेजेंगे सारा। तो जो परिवर्तन आता है वो भीतर से ही आता है। कल बाबा ने कहा था ज्ञान योग और क्या, सेवा, ये 3 बातें, ज्ञान योग और शक्ति, इन तीनों पर क्या करो, प्रयोग करो, योग पर प्रयोग करो। नए नए योग, नई नई विधियां, नए नए वेरिएशंस क्रिएट करो, और व्यक्तिगत और योग वास्तव में व्यक्ति अपने अनुभव से ही सीख, कहीं से नहीं सीख, ना कोई टेक्स्ट से, ना कोई कमेंट्री से, ना कोई इमेजिनेशन से, ना कोई विजुअलाइजेशन से, क्योंकि वो तो परिणाम है हर चीज का। योग एक वो है, जैसे कल मुरली में बाबा ने कहा था, ये क्या है, सहज योग, राजयोग। योग वो टूल है, जैसे एक डॉक्टर है और वो पेशेंट को कहता है ये दवाई है, इस दवाई को तुम शहद के साथ ले लेना। पेशेंट कहता है नहीं, शहद तो मैं खाता ही नहीं, मुझे सूट ही नहीं होता है, या फिर वो कहता है ये मांसाहार है, उसकी अलग अलग धारणा है। अच्छा ठीक है, तो डॉक्टर कहता है तुम शहद के साथ मत खाना, इस दवाई को तुम दूध के साथ लेना। वो कहता है दूध, दूध तो मैं पीता ही नहीं, दूध मुझे पसंद ही नहीं, या फिर अलग अलग विचार है दूध के विषय में लोगों के। वो कहता है, डॉक्टर कहता है ठीक है फिर तुम इसको पानी के साथ ले लेना। तो ये जो दवाई है वो योग है, और वो जो अलग अलग है, ज्ञान योग, कर्म योग, प्रेम योग, भक्ति योग, ये सब क्या है, ये अलग अलग है, ये माध्यम है, ये मीडियम है, जिसको जो पसंद है। कोई लोग ऐसे हैं जो कर्म योगी है, उनको कर्म के सिवा सूझता ही नहीं, एक्सट्रोवर्ट, उनको बैठने को बोलो तो बैठ नहीं पाते एक मिनट भी, योग तो बिल्कुल नहीं हो। हाँ भाषण देने को कहो, कितना भी भाषण दे सकते, भाषण दे सकते हैं, कर्म कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते, पर खुद एकांत में वेरी डिफिकल्ट, वो कर्म योगी है। तो चलो कर्म योगी से तुम योग तक पहुंचो, योग की ये दवाई जो है उसको कर्म के साथ लो। दूसरे जो है वो ज्ञान योगी, ज्ञान योग, जिनको अध्ययन में, स्टडी में बहुत इंटरेस्ट है, वो सेकंड कैटेगरी है लोगों की। वो ज्ञान के विस्तार में जाना चाहते हैं, ज्ञान की गुह्यता में जाना चाहते हैं, समझना चाहते हैं ये ज्ञान है क्या, ये 5,000 वर्ष क्यों, ये डायनासोर कब आए, ये रिपीट क्यों होता है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो उसमें योग को जोड़ो। फिर तीसरे जो है वो प्रेम योगी, ये सबसे ज्यादा कैटेगरी इसी की है, वो कुछ भी नहीं चाहिए, बस बाबा की याद, प्रेम प्रेम प्रेम, उसमें जोड़ो फिर योग को। बाकी किसी भी मार्ग से जाओ, ज्ञान के मार्ग से, कर्म के मार्ग से, या प्रेम के मार्ग से, ये उसमें मिलाया जा सकता है योग को। तो ऐसी कैटेगरीज है। इस ब्राह्मण परिवार में भी दो विभाजन है, एक तो वो जो फिलोसोफर्स है, और एक जो वो मिस्टिक्स है, मिस्टिक अर्थात प्रेम वाले। ज्ञान बिन ज्यादा समझ में नहीं आता है, ये मुरली इतनी बड़ी 8 पेज की, उसमें टेस्ट देना, ये तो टेंशन ही है पूरा। और अभी 47 मुरलियों पर टेस्ट, ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है, विचारधारा ही अलग है, कहते ये सब बाबा ने कुछ नहीं कहा है, बाबा ने कहा है आत्मा समझ के मैं आपको याद करूं, बस ये सब चीजें करनी नहीं है, पर ये इतना आसान है, दुनिया की टेंशन से यहां है और यहां ही टेंशन। तो वो एक कैटेगरी है। दूसरी कैटेगरी है प्रेम वाली कैटेगरी है, दूसरी कैटेगरी है ज्ञान वाली, फिलोसोफर्स, थिंकिंग, लॉजिकल, मुरलियों का अध्ययन करना, किसी की क्लास कुछ सुनना पसंद नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं सब पोल्यूशन है, बाबा ने क्या कहा है हम खुद उसको स्टडी करेंगे और खुद उसका अध्ययन करके उसका निष्कर्ष निकालेंगे, जैसा हमको पसंद है हम करेंगे, वो एक कैटेगरी है। तो फिलोसोफर्स एंड मिस्टिक्स, और तीसरी कैटेगरी है दोनों का मिक्सचर, जिनमें तर्क भी है प्रेम भी है, जो इधर भी आगे है और उधर भी आगे है, दोनों को समझते हैं, कभी ये कभी वो, कर्म में भी आगे है, तीनों कैटेगरीज है, सभी में इन्वॉल्व होते हैं, ज्ञान में भी, सेवा में, योग में, फिर भी कोई कोई है जिनको किसी किसी चीज में ज्यादा इंटरेस्ट है। अगर ये राजयोग है, अगर राजयोग को प्लॉट करे, तो राजयोग केवल बैठ के मुरली, साकार मुरली सुनना, अमृत वेला करना, योग करना, कराना भट्टी, कराना कराना कमेंट्री, कराना कराना करना कराना, ये सबसे राजयोग नहीं है, राजयोग में कम से कम 10-15 चीजें हैं। अगर ऐसा डायग्राम बनाया जाए, सबसे पहली चीज राजयोग मतलब अमृत वेला, पावरफुल। राजयोग मतलब ब्रह्मचर्य उसमें होना चाहिए, बिना ब्रह्मचर्य के कोई राजयोगी नहीं है। तीसरा, राजयोग के अंदर ही एक्सरसाइज, राजयोग के अंदर ही फूड, क्या खा रहे, राजयोग के अंदर ही हेल्थ, बिना हेल्थ के फेल है, बीमार पड़ जाओ, हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओ। करो याद बाप को आत्मा समझ के। सो टफ, सो डिफिकल्ट, और वो सब परिणाम है क्या खा रहे हो। इसलिए इस भट्टी का नियम क्या था, एक भोजन का, कुक्ड से अनकुक्ड, धीरे धीरे, एटलीस्ट वंस। एक्सरसाइज सेकंड पार्ट है। जब तक बॉडी एक्सरसाइज नहीं करती, डलनेस रहता है एक, ये भी राजयोग का ही हिस्सा है। उसके बाद में मेमोरी स्किल्स, मेमोरी ट्रेनिंग। जब तक मेमोरी ट्रेनिंग नहीं, ये मुरली का क्या पढ़ेंगे, कैसे उसको स्टडी करें, कैसे उसका अध्ययन करें। 8-8 पेजेस की एक एक मुरली, 10-10 पेजेस की एक एक मुरली, ऑलरेडी लेट एडमिशन ले लिया है। हाउ वी स्टडी, यू नीड स्किल्स, टेक्निक्स, जो कि हम मार्च की सिमरन भट्टी में देख चुके हैं। और अभी भट्टियों का ये जो सिलसिला चल रहा है, इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे। अभी हम ईयर वाइज जा रहे थे, अभी हम ईयर को हटा देंगे और ईयर वाइज नहीं रखेंगे, क्योंकि टारगेट बहुत आगे है। टोटल कितनी हो गई अभी तक, 8381 हो गया, 685 अभी बाकी है। तो यू नीड स्किल्स, टेक्निक्स टू डू दैट। हर चीज की टेक्निक चाहिए। कल हमने देखा था भाषण की टेक्निक, भाषण शुरू करने की टेक्निक। कोई जोक से शुरू करते, कोई चुटकुले से शुरू करते, कोई स्टोरी से शुरू करता है, कोई प्रश्न से शुरू करता है, अलग अलग, वो भी एक टेक्निक ही है। कोई एक्टिविटी से, कोई गेम से, कोई फन से। तो यू नीड टेक्निक्स हर चीज में, उसी तरह यहां भी टेक्निक चाहिए। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बॉडी स्कैनिंग, जो कि रोज करना है, अधिष्ठान की मुद्रा। ये बहुत पावरफुल टेक्निक है। ब्रेथ अवेयरनेस, श्वास को देखना, श्वास आ रही है, श्वास जा रही है। ये श्वास विकारों से जुड़े हुए है। श्वास को देखते देखते धीरे धीरे विकार दिखने लगते हैं। बॉडी की संवेदनाओं को देखते देखते सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचते हैं। सबकॉन्शियस माइंड तक हमारा कुछ भी नहीं पहुंचा है। हम खाली कहते हैं, मेडिटेशन करते हैं, कराते हैं, मैं आत्मा हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं महान आत्मा हूं, पर सारा ऊपर चेतन मन में घूम रहा है, अचेतन में कुछ भी नहीं गया। मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं, इसको सकाश, उसको सकाश, ये दे दिया, वो दे दिया, अंदर कहां गया। अंदर तो क्या जाता है, शौक। अंदर क्या जाता है, किसी ने इंसल्ट कर दी 100 लोगों के सामने, वो अंदर घुसा। बाकी ये जो किया, मैं महान आत्मा हूं, ये घुसा क्या। करंट लगना चाहिए अंदर जाने के लिए, शॉक चाहिए। सबकॉन्शियस ये भाषा समझता ही नहीं। अफर्मेशंस बहुत अच्छी चीज है, पर अफर्मेशंस कॉन्शियस माइंड पे काम करते हैं। इसलिए कई लोगों का ब्रह्मा कुमारी इसके लिए विरोध इस एक बात का है कि आपका राजयोग केवल कॉन्शियस माइंड पे काम करता है। हाँ, हिपोक्रेसी, वॉट एवर, बट हमको बाबा ने इतनी गुह्य बातें सिखाई है कि सबकॉन्शियस तक कैसे पहुंचे, अचेतन तक कैसे, क्योंकि हमारे सारे सामान, सारा कुछ जो भी हम कराते हैं, सब ऊपर ऊपर घूम रहा है, अंदर कहाँ गया। अंदर सबकॉन्शियस तो ये शब्दों की भाषा समझता ही नहीं है। पहली बात, उसे तो पिक्चर्स चाहिए, उसे शौक चाहिए, उसे संवेदनाओं की भाषा समझ में आती है। काम विकार खराब है, किसको नहीं पता, काम महाशत्रु है, हर मुरली में आता है, पर वो तो तर्क है, वो लॉजिक है, वो माइंड है। यहां तो सुखद संवेदना की भाषा समझता है सबकॉन्शियस, सेंसेशन की। वो सेंसेशन के सामने सारा 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 फेल है। वही चाहिए। अल्कोहलिक को पता नहीं कि अल्कोहल नहीं लेना चाहिए, सिगरेट पीने वाले को पता नहीं सिगरेट नहीं लेना चाहिए, पर वो पीते ही पूरे तन बदन में सुखद संवेदनाएं जागती है। वो एडिक्शन उस संवेदना का है। उसी तरह ये भी सबकॉन्शियस कौन सी भाषा समझता है? शौक। आदत बनाने के लिए कितना टाइम लगता है? कोई कहता है 3 दिन, कोई कहता है 7 दिन, कोई कहता है 30 दिनों में आदत, 21 दिनों में आदत बनती है, कोई कहता है 90 दिनों में बनती है। अच्छा, एक लाइव वायर है इधर, करंट लगा, कितना देर में आदत बनी वापस न लगाने की? 1 सेकेंड। उसी तरह सबकॉन्शियस को क्या चाहिए? शौक। पहले यह पता रहना चाहिए कि हमने अब तक जो कुछ किया, जो कुछ भी किया, वो स्कूल का जैसा उदाहरण दिया, ऊपर से लेके नीचे तक सब करप्ट, सब व्यर्थ है। अभी मुझे क्या करना है? अब तक जो कर रहे थे वो बाहर बाहर, जिसको हम सेवा कह रहे थे वो सेवा है ही नहीं, वो सेवा का समाचार नहीं, वो मैं का समाचार है, वो खोखला है, ढोंग और नाटक है। वो सेवा नहीं, वो प्रचार था। और वो भी किसका प्रचार? खुद का। उसके पीछे नाम मान छिपा हुआ है, रियल कहाँ है? ये प्रश्न आना चाहिए क्या करे, ये प्रश्न आना चाहिए कि मुझे रुक के सोचना है कि ये सब तो जो कुछ कर रहा हूं और जिसको मैं सेवा कह रहा हूं, ये सेवा है या अहंकार का विस्तार है? जिसे हम सोचते हैं कि हम अभी गए और भाषण दिया, बहुत अच्छा, 400 लोग थे, हमको लगता है वाह वाह वाह, इतनी तालियां बज गई, कितना अच्छा भाषण दे दिया। जब तुम भाषण दे रहे थे वो सोच रहे थे कब इसका पूरा हो और ब्रह्मा भोजन करने जाए, तालियां बजा बजा के। एक बार हमने सोचा संडे वाली जो क्लास होती है ना, क्लास ना करा के उसको योगी कराए पूरा 1 घंटा, देखा सब सो गए। संडे की क्लास होती है ना, दिवाली का दिन था 2017 शायद, तो संडे की क्लास पूरी मुरली को कमेंट्री बना दिया और सोचा इसको योगी कराएंगे अभी पूरा पूरा, जैसे कि तैसे मुरली एज इट इज। और बीच बीच में देख रहे थे, पहले तो उठ उठ के जा रहे थे और जो बैठे थे वो भी सो रहे थे। फिर सोचा ये मेथड फेल हो गई। हाँ, कनरस, लोगों को कहानियां चाहिए, चुटकुले चाहिए, जोक्स चाहिए, कनरस चाहिए, एंटरटेनमेंट चाहिए, ये एक्टिविटी चाहिए, ये सब चीजें चाहिए। ऐसे कितने हैं जो रियल अध्यात्म में जाना चाहते, पुरुषार्थ करना चाहते? बहुत कम। कोटों में कोई और कोई में कोई जो ब्राह्मण है, उसमें भी कोटों में कोई और कोई में कोई, बाकी तो किसी और चीज में लगे हुए हैं। इसलिए ये सारी हलचल में एक ही आधार है और वो है अव्यक्त वाणी। साकार मुरली भी नहीं ली है इसमें, क्यों? क्योंकि उसमें छेड़छाड़ कर सकते हैं। साकार मुरली एक ही व्यक्ति, क्योंकि सभी पढ़ते हैं और उस एक के ही कितने इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं, 1,000। अव्यक्त मुरलियों को छेड़छाड़ नहीं कर सकते कोई। अव्यक्त मुरलियों के छेड़छाड़ के लिए भी आधा बहुत पावर भी चाहिए, और एक मुरली का खंडन करना है, तर्क निकालना है, तो उसको 10 मुरलियों का कंपैरिजन चाहिए, उसके लिए घुसना पड़ेगा, और जो घुसने जाएगा वो परिवर्तन हो जाएगा। इसलिए ये प्रोजेक्ट साकार मुरलियों का नहीं है, ये अव्यक्त मुरली है। इसलिए इसका गायन भक्ति मार्ग में श्री कृष्ण की जो गीता है उसके सबसे ज्यादा टीका टिप्पणी है, वल्लभ की गीता, शंकर की गीता, राम की, गांधी गीता, टैगोर गीता, पर कुछ कुछ गीता है उसका कहीं छेड़छाड़ नहीं है। अष्टावक्र की गीता कोई हाथ नहीं लगा सकता उसको, वो एकदम हाईफाई है, एकदम हाई स्टैंडर्ड, सीधा आत्मा परमात्मा की बातें, मतलब एकदम प्योर फिलोसॉफी है। बाकी ये गीता में तो ढेर सारी बातें हैं, वो किसका यादगार है? साकार मुरलियों का। एक साकार मुरली अगर 10 लोग सुनाए संडली पर बैठ के, सबके 10 अलग अलग इंटरप्रिटेशन, पर अव्यक्त मुरली के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता, जो है वही एज इट इज। अव्यक्त मुरली से डर भी तो लगता है, उसकी भाषा भी समझ नहीं आती है, अंग्रेजी का ट्रांसलेशन तो खत्म ही हो जाता है उसकी ब्यूटी, उसके उसके अर्थ भी खत्म हो जाते हैं। एक ये भी है, ट्रांसलेट किसी भी भाषा में करो, द मोमेंट यू ट्रांसलेट यू मर्डर द लैंग्वेज, खत्म हो जाता है वो। तो इसलिए सबसे पहला तो रुको, इस मुरली में भी यही कहा है, चेक करो मैं कौन सा सितारा हूं, ये पहली पहली है, और क्या जज करो मैं कौन सा सितारा हूं, सफलता वाला हूं, लकी वाला हूं, पुच्छल तारा हूं, पूछते ही रहते हैं, पूछते ही रहते हैं, पूछते ही रहते हैं, जो भी नया व्यक्ति मिला उसको पकड़ के पूछो भाई जी योग कैसे करना है, और उत्तर तो पता है, उत्तर में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है, बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है उत्तर में। जैसे उत्तर देने चालू, सामने वाला जो उत्तर दे रहा है तब अपना दूसरा प्रश्न तैयार हो रहा है कि अभी क्या पूछूं, नेक्स्ट नेक्स्ट पूछता हूं अभी ब्रह्मचर्य के बारे में। जब ब्रह्मचर्य के पूछा और वो ब्रह्मचर्य का उत्तर दे रहा है तो पूछ रहा है फिर क्या करो, इतनी इतना सारा जॉब है उसका सब क्या करना है, दोस्ती करने में इंटरेस्ट है। जब तक झूठ और दिखावा और आडंबर जाता नहीं, अध्यात्म चालू ही नहीं होता है। हमारे यज्ञ की भी कुछ स्टेजेस है, तीन स्टेजेस है। स्टेज नंबर वन, टोटल पॉजिटिविटी, नए ज्ञान में आने के बाद सब कौन दिखते हैं, ये देवी देवता है, फरिश्ते है, सारी बहनें मंदिर की देवी है, कुमार किस रूप में देखते हैं सेंटर की बहनों को, साक्षात महालक्ष्मी सरस्वती, सब कुछ बहुत पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, इतना पॉजिटिव इतना पॉजिटिव इतना पॉजिटिव, सब कुछ पॉजिटिव, बात ही मत पूछो। सेकेंड स्टेज में एंट्री होती है फिर फिर यहाँ बहुत सारी नई बातें पता चलती है, संसार में जो हो रहा है वो इधर भी हो रहा है, संसार में जो है वो सब इधर भी है, निगेटिविटी पता चलती है, अवगुण पता चलते हैं, अंदर का आडंबर पता चलता है, पॉलिटिक्स सब 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 निगेटिव निगेटिव निगेटिव, इतना निगेटिव, और कई लोग इसी में ही फंसे रह जाते हैं और इसी को अंतिम सत्य समझ लेते हैं, पर ये अंतिम सत्य ये नहीं है, परंतु इस स्टेज से जाना बहुत जरूरी है। सब कुछ एक तो नहीं तो शॉक लगेगा, नहीं तो शॉक लगेगा बहुत भयंकर वाला शॉक, हाँ हमने समझा कुछ और था और यहाँ क्या हो गया, हमने तो इनको बहुत ही देवता समझा था, ये क्या निकल गए अंदर से, हमने तो समझा था इनका भाषण सुन सुन के ही तो हम ज्ञान में आए, और जब इनके साथ दो दिन रहे तब पता चला भाषण कुछ और जीवन कुछ और। इसलिए जिसको बहुत मानते हैं ना उससे दूरी रहना, ये एक गुप्त नियम है। जिससे बहुत प्रभावित हुए या जिसको सुनकर हम बहुत जिसको सुनकर एकदम योगी लग जाता है, ऐसे व्यक्ति से दूर रहना है, हाँ अच्छी रखने के लिए, नहीं तो उसके पास जाते ही क्या होगा, शौक, और फिर निराश हो जाएंगे, उदास हो जाएंगे, ज्ञान ही छोड़ देंगे। तो सेकंड स्टेज है टोटल निगेटिविटी की, टोटल निगेटिविटी, सब 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 हर जगह पर पाखंड, हर जगह झूठ, परंतु ये जानना भी जरूरी है, नहीं तो क्या लगेगा, शौक उदास हो जाएंगे, कुमार डिस्टर्ब हो जाते, माताएं डिस्टर्ब हो जाती है, बहन मात बहन ने ऐसा कहा, कुमार बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होते हैं, बाद में आते ही नहीं है, आउट छोड़ देते हैं पूरा, क्योंकि इतना कुछ ऐसा देख लिया कि इच्छा ही नहीं है अभी। तीसरी अवस्था भी है, वो कौन सी, टोटल पॉजिटिविटी, दादियों की अवस्था, क्या दादियों को पता नहीं अंदर क्या चल रहा है, सब पता था, सब कुछ पता था, फिर भी साक्षी भाव, और ये वो अलग साक्षी भाव है, यहां पर भी बहुत खुशी है, यहां पर भी पॉजिटिविटी है, पर ये पॉजिटिविटी निगेटिविटी से गुजरी नहीं है, यहां जो पॉजिटिविटी आई है अभी, ये सब कुछ जानते हुए सब कुछ देखते हुए, वैरायटी ड्रामा है, हर एक का पार्ट अलग अलग है, कोई झूठ बोल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई अत्याचार पाप विकार विकर्म सब हो रहा है, फिर भी सबके प्रति शुभ भावना है, फिर भी साक्षी भाव है, फिर भी पॉजिटिविटी कम नहीं हुई है, और फिर भी कोई नया डिस्टर्बेंस होता नहीं है इसमें, यहां होता है, यहां पर भी, यहां तो बहुत भयंकर होता है, बहुत हलचल मच जाती है, नए नए ज्ञान में आए, सब कुछ आए, सब कुछ छोड़ के मधुबन में आ गए, यहां आए, यहां भी देखा, अरे ये क्या हो रहा है, ये डिस्टर्बेंस वाली स्टेज है, ये मैच्योरिटी वाली स्टेज है, ये संपूर्णता की स्टेज है, ये साक्षी भाव की स्थिति है। तो साक्षी जो है ये योग का साधन भी है तो योग की मंजिल भी है। साक्षी जो है वो साधन भी है तो पुरुषार्थ भी है तो मंजिल भी है तो लक्ष्य भी है। या उसको लक्ष्य बनाकर भी चलो या तुम साधन बनाकर भी चलो, दोनों चीजें हैं। पर इसकी प्रैक्टिस भी होनी चाहिए और लक्ष्य भी रखना है, रोज प्रैक्टिस करनी है। इसलिए बाबा कहते हैं यहाँ जो कुछ हो रहा है, हजारों चीजें हो रही है, हजारों प्रकार की हलचल हो रही है, हजारों जैसे जैसे यज्ञ आगे बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, कुछ कुछ नई नई बातें ऐड होती जाएगी जो हमने सोची भी नहीं थी, वो सब होगा। बाबा ने कहा यही वृक्ष हिलेगा, सब हिलेगा। यहां बचेंगे कौन? जो तपस्वी है, जो योगी है, जो निश्चय वाले है, केवल वही बचेंगे। बाकी तो सारे पत्ते झड़झड़ 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 झड़ जाएंगे, क्योंकि जो एक्सपेक्ट नहीं किया था वो मिल गया। कमल पुष्प समान का गायन संसार का नहीं है, इधर का है। इधर रहते हुए कमल पुष्प समान, डिटैच्ड, न्यारा प्यारा। अपनी सेवा करो डिटैच्ड, सेवा करो, योग कराओ, भाषण दो, भट्टी करो भट्टी कराओ, मुरली पढ़ो मुरली पढ़ाओ, जो भी करना है कर्म करो, डिपार्टमेंट की सेवा करो, पर सब करते हुए डिटैच्ड। किसी से कोई मतलब नहीं, ना किसी से कुछ चाहिए, जीरो एक्सपेक्टेशन पॉलिसी। बहुत अच्छा भाषण दिया, इच्छाएं जुड़ जाती है, क्या जुड़ जाती है, लोग तारीफ करे, लोग स्तुति करे, सब्सक्राइबर। हाँ, ये एक नई माया है। एक 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 आत्मा ने अपने अपने एक एक चैनल, इतने सारे एक ही सेंटर, अगर 10 लोग है 10 लोगों के 10 चैनल। और फिर एक भाई हमसे पूछ रहा था, हमारे सेंटर पे 3 बहनें हैं, उसके ना 1,00,000 सब्सक्राइबर, इसके 50,000 है, इसके 25, तो इसमें से विश्व महाराजन कौन बनेगा? विश्व महाराजन का सब्सक्राइबर से क्या संबंध है? कोई मतलब नहीं है इसका, ये सब भ्रम है। पद का संबंध स्थिति से है, पद का संबंध पवित्रता से है, भाषण से नहीं है। भाषणा कितनों को, कितनों के दिल को टच किया है। भाषण तो बहुत ही, मतलब 10% बस, वो एक कला है। भाषण का धारणा से क्या संबंध? 8 बजे उठो, जाके 9 बजे अमृत वेले पर भाषण करो, सारी 1,25,000 की, वाह 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 वा। प्रभावित, जो अमृत वेला नहीं करते उस दिन से अमृत वेला करना चालू कर दिया। कब? तुमको सुन के, तुम्हारा भाषण सुन के, और हम खुद सो रहे। पुण्य वर्मा हो गया, ये भी एक भ्रम है, उसका भाग्य उदय हुआ उसके सत्कृत्य के कारण, ना कि तुमको सुनने के कारण। जब विनाश होने वाला होता है तो ऐसी इच्छाएं प्रकट होने लगती है। पूरे 13 साल, 14 साल के वनवास में 13 साल तक सीता के मन में कोई इच्छा नहीं, कभी राम से कुछ नहीं मांगा 13 साल में, एक ही बार मांगा कि वो हिरण मुझे दे दो बस। तब तक कोई नहीं मांगा, और राम ने कहा नहीं नहीं समझाया, वो तो मुझे माया भी लग रहा है। वो कहते मैंने आज तक आपको कुछ नहीं मांगा, पहली बार मांग रही हूं, ठीक है नहीं देना है तो मत दो। पति धर्म तो मैं पालन करूंगा। लक्ष्मण कहता है आप मत जाओ, मैं लेके आता हूं। नहीं लक्ष्मण, सीता ने मुझे मांगा है, मुझे अपना पति धर्म निभाना, पहली बार उसने मांगा है, तो क्या मैं नहीं जाऊंगा? फर्स्ट टाइम। तो आज का भट्टी का अंतिम दिन, तो कल से 46 मुरलियां रिवाइज करनी है, आज से ही पढ़ाई चालू करनी है। आज एक ही होमवर्क है, बस गीत लिखना है खुद ही, और खुद ही इस धुन में, इस ट्यून में उसको गाना है। यादों में तुम हो बाबा, ख्वाबों में तुम हो बाबा, जीवन तुम्ही से बाबा, हर सांस तुम हो बाबा, सागर भी तुम हो बाबा, साहिल भी तुम हो बाबा, दिन की तुम धड़कन बाबा, सरगम की धुन तुम बाबा, इन आंधी तूफानों में खो न जाऊँ मैं बाबा, खो न जाऊँ मैं बाबा, सुनसान काली रातें राहों में आते जाते भयभीत करती पल पल, बेचैन दिल को माया, निश्शब्द फैली छाया, तेरे ही सहारे अब तो निकला अकेले बाबा, ओ बाबा तू ही किनारा, ओ बाबा तू ही सहारा, ओ बाबा मेरे बाबा, यादों में तुम हो बाबा, ख्वाबों में तुम हो बाबा, दर्द की दवा तुम बाबा। क्या ट्रॉफी, एक तो हो गया रीडर्स क्लब, डायबिटिक कैंप जो ग्रुप में पोस्ट कर दिया है, हर मास में एक बार होता है, तीसरा एक्सरसाइज हर क्लास रोज 6:30 से 7 बजे तक ऑनलाइन रखा है एक्सरसाइज का, तो आप सामने रख के एक्सरसाइज कर सकते हैं, ठीक है, रविनेश भाई करा रहे हैं, रोज 6 से 6:30 से 7 से पहले ही पूरा हो जाएगा। दर्द की दवा तुम बाबा, गम में सुकून तुम बाबा, सपनों की उड़ान तुमसे, जीवन की राह तुम बाबा, सफर में खुशी तुम बाबा, जीवन जीने का सहारा बाबा, हर पल में तुम हो बाबा, धड़कन में तुम हो बाबा, जीवन में तुम हो बाबा, पल पल में तुम हो बाबा, हर पल में तुम हो बाबा, जीवन में तुम हो बाबा। शांति।
से बाबा हर सांस तुम हो बाबा, सागर भी तुम हो बाबा, साहिल भी तुम हो बाबा, दिल की तुम धड़कन बाबा, सरगम की धुन तुम बाबा, इन आंधी तूफानों में खो ना जाऊं मैं बाबा, इन आंधी तूफानों में खो न जाऊं मैं बाबा, सुनसान काली रातें राहों में आते जाते भयभीत करती पल पल, बेचैन दिल को माया, बेचैन दिल को माया, निशब्द फैली छाया, तेरे सहारे अब तो निकला अकेले बाबा, ओ बाबा तू ही किनारा, ओ बाबा तू ही सहारा, ओ बाबा मेरे बाबा, यादों में तुम हो बाबा, ख्वाबों में तुम हो बाबा। दर्द की दवा तुम बाबा, गम में सुकून तुम बाबा, सपनों की उड़ान तुमसे, जीवन की राह तुम बाबा, जीने का सहारा बाबा, हर पल में तुम हो बाबा, धड़कन में तुम हो बाबा, जीवन में तुम हो बाबा, पल पल में तुम हो बाबा, हर पल में तुम हो बाबा, जीवन में तुम हो बाबा, हर पल में तुम हो बाबा।